खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के मुकाशवा में से खुदावंद की हदायत में से सीखें, आए हम सब चंद लम्हों के लिए खुदावंद के हजूर झुक जाएं और उससे उसकी हिकमत और दनाई मांगें, उससे उसकी बरकत चाहें और उससे उसकी कुदरत को मांगेंगे जो कुदरत बयान से बाहर है कि खुदा बाप उसकी कुदरत, उस कुदरत के वसीला से हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे ताकि अपनी जिंदगियों में 100 गुना फल लाएं। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन तेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी, क्योंकि तूने अपने कलाम में कहा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर वो बात जो तेरे मुंह से निकलती है। और तेरा कलाम हर दोधारी तलवार से ज्यादा तेज है जो हमारी तरबियत और नसीहत और दिलों और गुर्दों को जांचता है ताकि हम तेरी पाक मर्जी को जाने और तेरे बेटे के हम शक्ल बने। सो आज हम जो कुछ भी सीखें हम सब के लिए बरकत, रहमत और खुदावंद तरबियत का और मलामत का और रहनुमाई का वसीला बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। हम पालूस रसूल की जिंदगी के उस हिस्सा में से पढ़ रहे हैं जो खत उसने कैद खाना में से इफिसस की कलीसिया को लिखा, उनकी हौसला फजाई के लिए, उनकी तरबियत और नसीहत के लिए। और 7वीं आयत में हमने देखा था कि पालूस रसूल कहता है कि खुदा के उस फजल की बख्शिश से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, वो उस बात को याद करता है कि वो इस लायक नहीं था लेकिन खुदा की ये बख्शिश, खुदा की ये रहमत, खुदा का ये तोहफा उसे खुदा की तरफ से मिला जिसका वो हकदार नहीं था, जिसके वो लायक नहीं था, जिसके वो काबिल नहीं था कि खुदा ने उसे अंजील की बशारत देने के लिए मसीह का खादम बनाया। और हमने देखा था पिछले दिनों में कि लफ्ज खादम जब उस दौर में इस्तेमाल किया पालूस रसूल ने पहला करंथियों 4 बाप, तो उस दौर में करंथस की कलीसिया जहां पर रहती थी वो शहर कारोबार में बहुत ज्यादा मशहूर था। और उस दौर में कारोबार किस तरह किया जाता था? जहाजों के ऊपर। आज के दौर में जहाज उड़ने वाले हैं, बसों के वसीला से, ट्रकों के वसीला से लोग दूसरी जगह तक अपना माल, दौलत और चीजें पहुंचाते हैं, खाने पीने की, पहनने की। उस दौर में पानी वाले जहाज थे। और हम सबको याद होगा कि पालूस कहता है कि मैं बारहा जहाज के खतरों में, जहाज टूटने में, और फिर कहता है कि सर्दी में मैंने अपनी रातें गुजारी। और आपको याद होगा कि पुराने अहदनामा में हमें जिक्र मिलता है कि जब यूना नबी, खुदा ने उसे बुलाया कि तू नैनवा को जाकर मनादी कर, तो उसने क्या पकड़ा था? जहाज पकड़ा, टिकट खरीदी और कहां को गया? तर्तीस को भागा। तो उस दौर में जहाज, लकड़ी के जहाज इस्तेमाल किए जाते थे सफर के लिए, खाने पीने की चीजें, कपड़ा और किमर्जी जो दूसरे रंग तैयार किए जाते थे, बहुत सी चीजें एक शहर से दूसरे शहर में। सो पालूस रसूल जब करंथियों, पहला करंथियों 4 बाप उसकी पहले 10 आयात में लफ्ज खादम का इस्तेमाल करता है तो वो उस वक्त अपनी तस्वीर कुछ इस तरह पेश करता है कि उस जहाज के नीचे काम करने वाले वो शख्स जो चप्पू चलाते थे, वो चप्पू चलाने वाले उस मलाह की मानद अपने आप को पेश करता है। और उस मलाह को क्यों वो बयान करता है, क्यों उस चप्पू चलाने वाले की मिसाल के तौर पर वो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल करता है जो बेड़े के नीचे बैठा खुफिया तौर पर चप्पू चलाता रहता है और सिर्फ अपने कप्तान की आवाज़ को सुनता है कि दाएं या बाएं या सीधा या मुड़ना है या रुक जाना है। पालूस रसूल लफ्ज खादम में कोई भी इज्जत और शोहरत और जलाल नहीं देखता। और यही बात वो क्रंथस की कलीसिया को समझाना चाहता था कि बाकी तमाम जो खादम तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारा रुपया पैसा, तुम्हें गलत तालीम और मसीह की खुशखबरी को बदलने की कोशिश करते हैं। और वो पालूस को नीचा करते थे। वो कहते थे कि पालूस की खिदमत, पालूस का पैगाम गलत है। वो खुदा के फजल के बारे में बयान करता है। वो कहता है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने से निजात है। लेकिन जो झूठे आते थे वो कहते थे कि यीशु पर ईमान से नहीं बल्कि अमलों से, शरीयत के हुक्मों पर अमल करोगे तो निजात मिलेगी अगर तुम उन पर पूरे उतरोगे। तो वो लोगों को क्या करते थे, बेवकूफ़ बनाते थे। वो खुदा के कलाम की तालीम को बदलते थे। सो उस दौर में पालूस ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खादम। खादम का मतलब खाकसार, खिदमत करने वाला, खुदा की बात को सुनने वाला, उसकी रहनुमाई में चलने वाला, उस जहाज की मानद कि उस जहाज को चलाने वाले जो नीचे बैठे हुए चप्पू चलाते थे। आपने देखे होंगे फिल्मों में वो जहाज बहुत दफा के साइड से बहुत बड़ा सुराख है और उसमें से चप्पू निकले हुए हैं, और उनको मलाह कहा जाता था, बेड़े चलाने वाले जो सिर्फ और सिर्फ अपने कप्तान का हुक्म मानते थे। तो पालूस कहता है कि जब सातवीं आयत में कि खुदा के उस फजल की बख्श से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादम बना, खिदमतगार बना। किसकी कुदरत से? खुदा की कुदरत से, खुदा के फजल से, ताकि मैं उसकी रहनुमाई में चलूं। दूसरे लफ्जों में कहता है कि मैं कोई अपनी शानो शौकत और इज्जत इसमें नहीं ढूंढता कि तुम मेरी इबादत करो, जैसा कि अमाल की किताब में हो चुका था। बहुत से ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करते थे अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए। आपको याद होगा कि जब बदरूहे निकालने का वक्त था तो वहाँ पर कुछ लोग थे, उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बदरूहों को झिड़कना शुरू किया और कहने लगे कि यीशु के नाम से निकल जा, यीशु के नाम से निकल जा। तो बदरूहों ने कहा कि हम पतरस को भी जानते हैं, हम पालूस को भी जानते हैं और दूसरों को भी जानते हैं, लेकिन तुम कौन हो जो यीशु के नाम से हमें इख्तियार देते हो? उस दौर में वो लोग कौन थे? जादूगर थे। जादूगर थे, वो बुतों की और बदरूहों की मदद से लोगों को शफा देते थे। तो वो क्या चाहते थे कि जिस तरह पालूस और पतरस और दूसरे लोगों के वसीला से अजीब अजीब मौजे होते हैं, हम भी यीशु का नाम इस्तेमाल करें ताकि कुछ ना कुछ हो। तो क्या हुआ, उनको बदरूहों से क्या होना पड़ा? बेइज्जत। लिखा है कि वो अपने कपड़े बगैर भागे, बदरूहों ने उनको क्या किया, मारा पीटा, उनको बेइज्जत किया। सो लफ्ज खादम का पालूस जब इस्तेमाल करता है तो वो इस हवाले से कहता है, आठवीं आयत में कहता है, मुझ पर जो सब मकसों में छोटों से छोटा हूं। पालूस रसूल ने ना के सिर्फ यीशु मसीह को कबूल किया बल्कि उसने अपने नाम के मुताबिक खिदमत की। आप सबको याद होगा पालूस का मतलब क्या है, छोटा, छोटा खाकसार। और पालूस का मतलब यह है, और सौल का मतलब क्या था, किसी को याद है? बड़ा, अपने आप को आला जानने वाला। So, जब यीशु मसीह ने कहा कि साउल साउल साउल, तो यीशु मसीह ने वहां पर उसे बुलाया उसके पुराने नाम से, लेकिन बाद में उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम पालूस रखा। तो पालूस रसूल जैसे जैसे मसीह की मोहब्बत में गहरे में उतरता गया, उसके फजल को जानता गया, उसकी बख्शिश को समझता गया, उसके तरस को जानता गया, तो पालूस रसूल की ज़िंदगी में हमें मुख्तलिफ दर्जे या जिसे कहते हैं स्टेप नज़र आते हैं। जैसे छत पर जाने के लिए हमें पौड़ियों की ज़रूरत है, पौड़े बने होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, दसवां, और हम छत पर पहुंच जाते हैं। पालूस की जिंदगी में भी हमें ऐसा ही नजर आता है कि वो यहां से शुरू करता है और फिर वो खुदावंद की पहचान में आगे ही आगे बढ़ता जाता है। इसलिए पालूस रसूल ने अपने खतूत में कलीसिया को लिखते हुए 3 दफा अपने आप को उसने मुख्तलिफ तरीके से पेश किया। सबसे पहले वो अपने आप को कहता है कि मैं सब ईमानदारों में से छोटों से छोटा हूं। मेरे साथ इस हवाला को देखें। आज हम पालूस रसूल की जिंदगी में उस वाक्या को देखेंगे जहां पर वो ये बातें करता है। मेरे साथ निकालें पहला करंथियों उसका 15वां बाप। 15वां बाप हम उसकी जब पहली 8 आयात को देखते हैं, 7 को, तो पालूस रसूल खुशखबरी का पैगाम देता है उस कलीसिया को जो करंथस की कलीसिया है, जिसे बहुत से लोग झूठे नबी उसमें उठ खड़े हुए थे, झूठे लोग आ चुके थे, ताकि मसीह की उस निजात के काम को और उस खिदमत को जो उसने की थी उसे झूठा करके कहें कि हमें खतने के वसीला से निजात है, अगर हम हैकल में सोना देंगे तब निजात है, अगर हम 10 अहकाम पर ही हुक्म करेंगे तब निजात है। लेकिन पालूस कहता है कि अगर तुम एक ही हुक्म को तोड़ दो तो सारी शरीयत के क्या ठहरे? मुजरम ठहरे। इसलिए वो कहता है, पालूस रसूल 8वीं आयत में, यहां पर वो अपने बारे में कहता है, और सबसे पीछे मुझको गोया जो अधूरे दिनों की पदैश हूं दिखाई दिया। वो कहता है यीशु मसीह मुझ पर जाहिर हुआ जैसे तुम पर जाहिर हुआ। और फिर 9वीं आयत में वो इस बयान को कहता है, क्योंकि मैं रसूलों में से सबसे छोटा हूं, बल्कि रसूल कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि मैंने खुदा की कलीसिया को सताया था। वो उनको बयान करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे दरमियान अपने आप को फिर बताना चाहता हूं कि मैं ओहदा नहीं ढूंढ रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मुझे रसूल कहो और फिर रसूलों के मुताबिक मेरी इज्जत करो। वो कहता है कि जो पैगाम मेरे पास है उस पैगाम पर नजर करो, उसे कबूल करो और उससे बरकत हासिल करो। क्योंकि दूसरे तमाम जो लोग आते थे वो चाहते थे कि उनकी इज्जत की जाए, वो चाहते थे उनको आला मर्तबा दिया जाए। आपको याद होगा कि इमाल की किताब में इब्तदाई कलीसिया रसूलों के साथ किस तरह पेश आती थी। वो अपना सब कुछ बेच बूझ कर, सब कुछ उन्होंने अपना घर बार जो भी करते थे वो सब रसूलों के पास लाते और उनके कदमों पर रख देते और कहते थे कि तुम ही हमें बांट दो ताकि हमारा रोजमर्रा का गुजर बसर हो। ये इब्तदाई कलीसिया में असूल था कि लोग अपनी जगह को, अपने कारोबार की चीजों को, जो कुछ करते थे वो खुदा के लोगों के पास लाते थे। तो झूठे लोग ऐसी ही इज्जत और शान और शौकत कलीसिया से चाहते थे। पालूस कहता है कि मैं उन झूठों की तरह ये नहीं चाहता। इसलिए वो कहता है कि मैं सबसे छोटों से छोटा हूं। और फिर 10वीं आयत में कहता है, लेकिन जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं, बल्कि मैंने उन सबसे ज्यादा मेहनत की और ये मेरी तरफ से नहीं बल्कि खुदा के फजल से है जो मुझ पर था। उस दौर में लोग कहते थे कि हम ज्यादा पालूस से मेहनत करते हैं। पालूस कहता है, जो कुछ भी मैं करता हूं, जो कुछ भी मैं अब हूं, जैसा भी मैं हूं, वो किस लिए हूं और किस तरह हूं? खुदा के फजल से। आपको अपनी जिंदगी में यह सच याद रखने की जरूरत है कि जब आप अबलीस के झूठों से नीचे किए जाएं, जब आप पर अबलीस के फरेबों का हमला हो, जब बहुत दफा लोग आप पर उंगली उठाएं और कहें कि भाई आप ऐसे हो, बहन आप ऐसे हो, तो हम कह सकते हैं कि मैं जो कुछ हूं खुदा के फजल से हूं। क्योंकि हम हर रोज नए फैसले करते हैं और हर रोज नया फैसला हमें नई जगह, नई सिमत और नए नतीजे की तरफ लेके जाता है। बाइबल मुकद्दस में 2 किस्म के फैसले हैं, गलत और दुरुस्त। फैसला हमारा है कि हम कौन सा करेंगे। बाइबल मुकद्दस में 2 किस्म के रवैये हैं, खाकसारी का या तकब्बर का, ये हमारा फैसला है कि हम किसका चुनाव करेंगे। बाइबल मुकद्दस में हमें दो चीजों का जिक्र किया गया है, हम लानत को चुनाव करेंगे या फिर बरकत का, ये हमारा अपना फैसला है। और इसका नतीजा क्या निकलेगा, या हमें अजर मिलेगा या फिर खुदावंद यीशु मसीह कहेगा के मैंने तुम्हें दिया लेकिन तुमने उसके लिए कुछ भी ना किया, इसलिए मैं तुम्हें किसी चीज पर इख्तियार नहीं दूंगा। सो जो कुछ हम इस जमीन पर करते हैं उसका जमीन के ऊपर और आसमान पे क्या है, बहुत बड़ा अजर है। सो ये वो पहली बात थी जो पालूस ने कही कि मैं तुम सब रसूलों में से सबसे छोटा अपने आप को समझता हूं। और दूसरा बयान हम अभी पढ़ चुके हैं इफिसियों, इफिसियों 3 बाप उसकी 8 आयत में पालूस कहता है, उनको भी याद दिलाते हुए खुदा के फजल, खुदा की बख्शिश को, खुदा की रहमत को, और कहता है 8वीं आयत में, मुझ पर जो सब मकसों में छोटों से छोटा हूं, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूं। सो सवाल यह है, आप पर जो फजल हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आप उस फजल के बारे में दूसरों को बताएं। आप पर जो रहमत हुई है, खुदा चाहता है कि इस रहमत के बारे में दूसरों को बताएं। आपकी जिंदगी में जो मसीह का प्यार आया है, खुदा चाहता है कि ये मसीह का प्यार दूसरों तक पहुंचे। बेशक हम नाकाम होंगे, बेशक हम भूल जाएंगे, बेशक हम गलती करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ, क्या हम उस गलती में पड़े रहेंगे या फिर उठकर दोबारा जलाल के बादशाह की तरफ भागेंगे। क्योंकि पालूस रसूल यही कहता है, फिलिपियों 3 बाप में वो कहता है 13वीं आयत में, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, बल्कि ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की तरफ बढ़ता हुआ जाता हूं, निशान की तरफ। हमारा मकसद इस जमीन पर है कि यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिले। हमारी जिंदगी में हर रोज ये जुमला होना चाहिए, यूहन्ना की तरह, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा कि जरूर है कि मैं घटूं और खुदावंद यीशु मसीह बढ़े। पालूस की जिंदगी में यही उसका निशान और जीने का मकसद था। जब वो कहता है कि जरूर है कि मैं घटूं, तो वो कहता है कि मैं अपने आप को भूल जाऊं, और जब वो कहता है कि तू बढ़े, तो वो कहता है कि उसको इज्जत और जलाल मिले, उसको अजमत मिले, वो ही हमारी गुफ्तगू में उसका नाम हो। जब हम रोजमर्रा की गुफ्तगू करें तो कहें कि खुदावन तेरा शुक्र है यीशु मसीह नासरी। हम बहुत दफा शुक्र करते हैं और गैर मबूदों का नाम लेते हैं, लेकिन अपने निजात दहिंदे का नाम लेना पसंद भी नहीं करते। सो हमारी गुफ्तगू में पालूस रसूल बार बार खुदा का फजल, खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि लफ्ज खुदावंद का उस दौर में, आज के दौर में भी इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ तौर पर, हाकम को, उस्ताद को, और फिर मास्टर को, या फिर कहते हैं कि बादशाह को भी खुदावंद कहा गया है दुनिया की सोच में। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह जुड़ जाता है तो उस जैसी कोई और शख्सियत है ही नहीं और ना ही कोई होगी। इसलिए हमें अपने बोलचाल में हर रोज कहने की जरूरत है कि खुदावंद तेरा शुक्र हो यीशु मसीह, खुदा के बेटे, यहोवा खुदा, ताकि हमारी जबान जो खुदा के कलाम की जुबान है उससे पता लगे कि हम किसके लोग हैं। मिसाल के तौर पर हम मुस्लिम भाइयों को देखते हैं, वो अपनी जुबान बोलते हैं, उनका अपना तरीकाकार है, और सबको पता चल जाता है कि वो मुस्लिम है, ऐसे ही है ना जी। जब हम जुबान अपनी बोलेंगे तो फिर क्या पता चलेगा कि हम मसीही हैं, हम मसीही हैं। सबसे बड़ी बात जो अगर कोई हमसे पूछे कि आप कौन हैं, तो हमें कहने की जरूरत है हम मसीही हैं। बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि मसीही कौन है, क्योंकि हम इस मुल्क में ईसाइयों के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए किन को बताने की जरूरत है हमें कि मसीही कौन है, वो जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। यीशु मसीह कौन है? वो जो अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है, वो जो वापस आएगा और दुनिया की अदालत करेगा। जब हमारा बयान ये होगा तो लोग जानेंगे कि इस मुल्क में भी मसीही रहते हैं, ना कि हम उनकी जुबान बोलें और फिर कहें कि ठीक है जी, भेड़े भेड़े हैं और टगे टगे हैं। इनको मिलाने की नहीं बल्कि इनको अलहदा करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा है, तुम्हारा उठना बैठना बोलना मेरी गवाही का वसीला बने, आई हम खुदा के जूर झुकें। और यही बात पालूस की जिंदगी में अनोखी थी कि उसका बोलना उठना बैठना, खा वो कैद खाने में था, खा वो कोड़े खा रहा था, उसके सुनने वाले इर्द गिर्द के लोग जानते थे कि वो यीशु मसीह का शागिर्द और यीशु मसीह का रसूल है।